नीति वचन अध्याय तीन। अध्याय तीन में भी पुत्र के लिए शिक्षा है। अध्याय तीन पद एक और दो। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। परिणाम स्वरूप ये तीन बातें हैं। यहां प्रस्तुतिकरण युगल बंदी में या जोड़े में है, शिक्षा की बात और उसके पालन का परिणाम, अपने हृदय में आज्ञाओं को रखे रहना ताकि आपकी आयु बढ़े और आपका जीवन शांतिमय एवं लंबा हो। आगे एक और वक्तव्य है। नीति वचन अध्याय तीन पद तीन। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियां पर लिखना। क्या? कृपा और सच्चाई। नीति वचन अध्याय तीन पद चार। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। अपने अपनी हृदय रूपी पट्टियां पर सच्चाई लिखने का फल देखा। नीति वचन अध्याय तीन पद पांच और छह। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना और इसका फल होगा। नीति वचन अध्याय तीन पद छह में आगे लिखा है, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप परमेश्वर की इच्छा कैसे जान सकते हैं? ये सवाल कई बार पूछा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए तीन चरण हैं। पहला चरण, पूरे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखना। दूसरा चरण, अपनी समझ का सहारा ना लेना। तीसरा चरण, उसी को स्मरण करके सब काम करना। इसका परिणाम ये होगा कि वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उपदेश का अगला शब्द, नीति वचन तीसरा अध्याय पद सात। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, और इसका लाभ ये होगा। नीति वचन तीसरा अध्याय पद आठ। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी, अर्थात आप स्वस्थ रहोगे। यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अगला परामर्श, नीति वचन अध्याय तीन पद नौ। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। पहली उपज अर्थात आमदनी। नीति वचन तीसरा अध्याय पद दस। इस प्रकार तेरे खते भरे और पूरे रहेंगे, ये दाग कुंड होना चाहिए। नीति वचन तीसरा अध्याय पद दस आगे लिखा है, और तेरे रस कुंडों से नया दाक मधु उमड़ता रहेगा। अब यहां एक मुख्य आज्ञा है। मैं दस नियम या मूसा को दी गई व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु परमेश्वर की मूल आज्ञा। हम कुदरत के नियमों की बात नहीं कर रहे हैं, वे तो है ही, हमने उन्हें पढ़ा भी है, हमने उन्हें सूत्रबद्ध किया और समझा है कि वे कार्य करते हैं। हम सदा ये नहीं जानते कि वे क्यों कार्य करते हैं, लेकिन ये तो निश्चित है वे कार्य करते हैं। हम ये जानते हैं कि कुदरत के मूल नियमों का भी विशेष कारण होता है। इसी तरह अंतिम नियम भी है जो परमेश्वर ने स्थापित किया है, जिनका कोई कारण अवश्य है। जैसे हमारे चारों ओर कुदरत के नियम देने में परमेश्वर का एक उद्देश्य है। हम नहीं समझते कि वे कैसे कार्य करते हैं, परंतु वे कार्य करते हैं। मुझे बिजली से लाभ उठाने के लिए ये समझने की आवश्यकता नहीं है कि बिजली कैसे कार्य करती है। ऐसे ही मुझे ये समझने की आवश्यकता नहीं है कि देने का नियम कैसे कार्य करता है। मुझे केवल देना है और लाभ उठाना है। यहां परमेश्वर का नियम कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। मैं विश्वास करता हूं कि प्रथम फल परमेश्वर का है। पहली बात जो मेरे वेतन से आती है या कमाई से जहां भी हूं, वो प्रभु के लिए निर्धारित है। यदि मैंने अपनी संपदा का एक टुकड़ा बेचा या आमदनी प्राप्त की है तो उसका पहला फल मैं परमेश्वर को देता हूं। यही अपनी संपत्ति के द्वारा प्रतिष्ठा करना कहलाता है। इस नियम को पूरी बाइबल में बहुत स्थानों पर बताया गया है और इसका उदाहरण भी दिया गया है। मलाकी की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, मलाकी 3:8-10 पद, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर इस नियम को परखने की चुनौती देता है। यीशु ने कहा, लूका 6:28 पद, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। पौलुस प्रेरित कहता है, 2 कुरिन्थियों 9:6 पद, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। मती 7:2 पद, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये परमेश्वर का नियम है। मैं नहीं बता सकता ये कैसे कार्य करता है, पर मैं सुनिश्चित कर सकता हूं कि ये कार्य करता है। परमेश्वर देने के नियम को मान्यता देता है, इसलिए सुलेमान अपने पुत्र को उपदेश देता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इसका फल क्या होगा? तेरे खाते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाकमधु उमड़ता रहेगा। नीति वचन 3:11-12, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। इब्रानियों की पुस्तक में ये नीति वचन इस प्रकार लिखा गया है, मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। इब्रानियों की पुस्तक में आगे लिखा है, इब्रानियों 12:6, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। यदि आप बुराई के साथ चलते हो तो साचेत हो जाओ, क्योंकि यदि आप परमेश्वर की संतान है तो वो आपको बुराई के साथ चलने ना देगा। बहुत बार हम गलत काम करने का साहस करते हैं तो पकड़े जाते हैं, तब हम सच में परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं। हम ये कैसे कर सकते हैं और फिर हम उसके साथ कैसे बने रह सकते हैं? ये कैसे हो सकता है कि कुछ लोग गलत करते हैं और पकड़े नहीं जाते, लेकिन मैंने गलत किया और पकड़ा गया। ये ठीक नहीं है। यदि आप गलत करते हैं और छूट जाते हैं तो आप उसमें कैसे बने रहते हैं? तो आप संकट के स्थान पर हो। यह एक संकेत है कि आप परमेश्वर के सच्चे पुत्र नहीं। परमेश्वर जिसको अपना पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। इसलिए मेरे जीवन में परमेश्वर की ताड़ना सदा एक सुखद कार्रवाई है, क्योंकि इससे ये सिद्ध होता है कि मैं उसका पुत्र हूं। वो मुझे बुराई के साथ रहने न देगा। पिता, तेरा धन्यवाद हो। जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा मत मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। नीति वचन अध्याय 3 पद 13 से लेकर 15 तक। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वो मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। वो बुद्धि और समझ प्राप्त करेगा, परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन में पूरी होगी। नीति वचन अध्याय 3 पद 16 और 17। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। बुद्धि और समझ से समस्त समृद्धियां मिलती है। नीति वचन 3 अध्याय पद 18। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वो धन्य है। शांति, जीवन, खुशियां आदि सब चीजें उस मनुष्य के पास होती है जिसने बुद्धि और समझ को ग्रहण किया है। वो बुद्धि की प्रशंसा करता है और उसके फल बताता है। नीति वचन 3 अध्याय पद 19 से लेकर 25 तक। यहोवा ने पृथ्वी की नेव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट न होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे, और तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय या अचानक आतंक से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना। जब न्याय का भयानक दिन आएगा तब आपको डरने की आवश्यकता नहीं। आपको भरोसा होना चाहिए, मैं परमेश्वर की संतान हूं। नीति वचन 3 अध्याय पद 26। क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। जब दुष्टों पर विपत्ति का दिन आएगा हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। नीति वचन अध्याय 3 पद 27। जिनका भला करना चाहिए यदि तुझमें शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। ये बात नए नियम में कही गई है, याकूब 4 अध्याय 17 पद। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये पाप है। आपके पास भलाई करने का सामर्थ्य है पर आप नहीं करते। भलाई करने में असफल रहने का पाप वैसा ही है जैसा गलत काम करने का पाप है। अनाचरण का पाप, जो सही और अच्छा है उसे न करने की चूक। नीति वचन अध्याय 3 पद 28। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। दूसरे शब्दों में पहले से ही उसे न टाल दे। नीति वचन अध्याय 3 पद 29 और 30। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति न बांधना। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार न किया हो उससे अकारण मुकदमा खड़ा न करना। बेकार के झगड़े में न पड़ना और न मुसीबत में पड़ना। नीति वचन अध्याय 3 पद 31 से लेकर 34 तक। उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न करना, न उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है परंतु वो अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। ठट्ठा करने वालों से वो निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। याकूब 4:10 पद। प्रभु की दृष्टि में नम्र बनो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मती 23:12 पद। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये सब उस एकमात्र सच्चाई की अभिव्यक्ति है, ऐसा ही होगा। टट्ठा करने वालों से वो निश्चय टट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। नीति वचन अध्याय 3 पद 35। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी।